लागे चोर कुंड ढूंढिया चोर कुंड ढूंढिया कोनी मी
भवेद
சந்தர் குர்கா சப்த நாச்சி நை குர்கா சப்த நாச்சி நை தத் சார நிரந்தர் சாரு நிரந்தர இக் தப்சி மனு மே தப் கரே இக் தப்சி बन में तप करे नित तीर्थ वासा नित तीर्थ वासा तपसी बन में तप करे एक तपसी बन में तप करे नित तीर्थ वासा अंतर बहुत है तामसी काहे भय उदासा एक बिंद जतन कर राख दे एक बिंद जतन कर राख दे से जती कहावे से जती कहावे बिन गुर शब्द ना छूटे बिन गुर शब्द ना छूटे परम आवे जावे भरम आवे जावे भरम आवे जावे एक गिर ही सेवक साध का एक गिर ही सेवक साध का गुरमती लागे लागे नोम दान इशनान दृढ़ नोम दान इशनान हर भगत सो जागे एक गिर ही सेवक साध का एक गिरही सेवक साध का गुरमति लागे गुरमति लागे एक गिरही सेवक साध का काय पटोला पाड़ती कंबलड़ी पैरे पाड़ पटोला धज करी कंबलड़ी पैरे जिन्नी वेशी सो मिले जिन्नी वेशी सौ मिले से वेश करे काय पटोला पाड़ती काय पटोला पाड़ती कंबलड़ी पैरे जोगना भगवी कंपनी जोगना भगवी कंपनी जोगना मैले वेश नानक कर बैठे आ जोग पाईए गुरमति लाग एक गिरही सेवक साध का गुरमति लागे नानक कर बैठिया जोग पाई ग्रह ताज बन खंड जाई है चुन खाई है कंदा अजो बेकार ना छोड़े इस भेखे था वो ग्रह भला ग्रह ताज बन खंड जाइए चुन खाइए कंदा अजो बेकार ना छोड़े पापी मन मंदा इस भेखे ठावो ग्रह भला एक कंद मूल चुन खाए बन खंड वासा एक कंद मूल चुन खाए बन खंड वासा एक भगवा वेश कर फिरे इस भेखे था वो ग्रह भला एक भगवा वेश कर फिरे जोगी सन्यासा जोगी सन्यासा अंदर तृष्णा बहुत इस भेखे था वो ग्रह भला अंदर तृष्णा बहुत छादन भोजन की आशा इस पेखे था वो ग्रह भला अंदर तृष्णा बहुत छादन भोजन की आशा वृथा जन्म गवाया दासा इस पेखे थाओ ग्रह भला जिथो को वर्षाए इस भेखे थाओ ग्रह भला पूछे जोगी पंगर नाथ पूछे जोगी पंगर नाथ तुए दुध बेच क्यों कांजी पाई फिटे चाटा दुध दो फिटे चाटा दुध दा रिड़किया मक्खन हाथ ना आई पेख उतार उदास दा जोगी सवाल करते पेख उतार उदास दा वत क्यों संसारी रीत चलाए ऐसा पैगुरदास जी ने इस तो पहला एक गल आखी कहन लगी बाबा आया करतारपुर बाबा आया करतारपुर देख उदासी शगल उतारा देख उदासी शगल उतारा पहर संसारी कपड़े पहर संसारी कपड़े मंजी बैठ किया अवतारा पूछे जोगी भंगर नाथ पेख उतार उदास दा वत क्यों संसारी रीत चलाई बाबा आखे पंगर नाथ तेरी माओ कुचजी आई पाना धोए ना जाती उस जे किसे ज्ञानवान मां दी कुखों जन्म लेंदो आ भाए कुचजे फुल सड़ाही वाली गल न हुंदी कहन लगे हे नाथ होए अतीत मैं फैसला कीते होए अतीत ग्रस्त तन फिर उन्हीं के घर मंगन जाई बाबा आखे इस भेखे था वो ग्रह भला केडी अजीब घटना है आपा आनंद कारज जो हर सिख दे जीवन दा एक सांझा मोड़ है फंक्शन है मैं एक बार कीती सी मेरा रब भी ग्रस्ती ग्रस्तन में तू बड़ो ग्रस्ती मेरा रब भी ग्रस्ती मेरा गुरु भी ग्रस्ती ते सिख भी ग्रस्ती मैं इसकी किसी केड़ी अजीब घटना रब नू वड्डा ग्रस्ती आख्या गया क्योंकि ग्रस्ती दुनिया विच असी एहो चीजां नू ਦੇਖਣੇ ਆ ਤੇ ਮੰਨਣੇ ਆ। ਜਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਘਰ ਬਾਰ ਹੋਵੇ, ਮਕਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੂੰ, ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਸਾਇਆ ਥੱਲੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੂਜੀ ਹੈ। ਜਿੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਘਰ ਬਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਤਿਆਗੀ ਹੈ, ਸੰਨਿਆਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਸੰਤਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਘਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਾਲਣ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਗ੍ਰਸਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰਸਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਜਿੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਓਡੋ ਵੱਡਾ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਜੱਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਰ, ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੀ ਤੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੱਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੋ ਮਾਤ ਪਿਤਾ, ਸਭ ਕੋ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ, ਤੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪ ਹਵਾਰਾ, ਤੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪ ਹਮਾਰਾ, ਨੌਨਿਦ ਤੇਰੇ ਅਖੁੱਟ ਭੰਡਾਰਾ। ਤੇਰੇ ਕੁਲ ਦੌਲਤ ਵੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਬਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਦਾਰਥ ਮਾਇਆ ਦੌਲਤ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਜਾਏ, ਉਹ ਤਿਆਗੀ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਬਾਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚਿੰਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣ ਦੀ, ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ नानक चिंता मत करो, सबको मात पिता प्रतपालक। नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है जल में जंत उपाय के, तिना विरोधी दे सो करता चिंता करे।
है? तेरे को चिंता भी है, गिश्ती वाला सारा वातावरण तेरे को भी है।
सो करता चिंता करे, जिन उपाया जग ग्रस्तन में तू बड़ो ग्रस्ती,
तू बड़ा ग्रस्ती। हल्के बाबा कबीर जी का शब्द एक बार आया, बाबा कबीर जी ने आखिया, कहन लगे मैं हैरान ते इस गल ते होना, जिस किसे नाल अभेद होना होवे, संबंध जोड़ना होवे, उन्दे वाला सुभा उन्दे वालियां आदतां मन विच आउन ताई संबंध कायम हुंदा है, ताई संबंध कायम हुंदा है। मैं एक बार कीती सी कि दोहां जीयां दा अमृतधारी होना क्यों जरूरी रखिया गया है, इसलिए नहीं कि जे भला एक अमृत ना छके दूजे नूं छकाना ही नहीं चाहिए, ना ही इंदे नाल कोई अधर्म हो जाता है। करमी आपो अपनी है, सिर्फ पंथक तौर ते मर्यादा सियाने विद्वाना ने बजुर्गों ने इसलिए बनाई सी ताकि दोहां जीआं दा सुभा मिल जाए, उन्हां दा वातावरण मिल जाए। भला किसे मजबूरी वस ऐसा समा आवे एक दो जीयां विच्चों गुरमत नूं ना समझने वाला गुरमत तो दूरी ते होवे ते ओ बिल्कुल अमोर मन बिरती वाला होवे ते की दूजा सारी जिंदगी तरसदा रहे कि मैं भी अमृत ना छक सके। करमी आपो अपने छक सकते हैं, लेकिन मर्यादा इसलिए बनाई, पंथ ने बनाई, ये मर्यादा पंथ है, सियाने बजुर्ग गुरु साहब दे वक्त का फैसला नहीं। जदों भाई दया सिंह, भाई दया राम, भाई धर्मचंद अमृत छकन का समा मिलेगा, जदों उन्होंने शीस अर्पण किए, जदों अमृत का मसला आया उदों गुरु ने आख्या पहला अपनियां पत्नियां नूं नाल लियाओ तां अमृत छकावांगा। करमी आपो हाँ, पंथक तौर ते फैसला बड़ा वाजब है, इनूं भी भुलाना नहीं, क्योंकि बजुर्ग विद्वान जिहड़े फैसले करदे ने उन्हां दी मानता विच आ के जीवन नूं सुखैन करना भी साडा अपना फर्ज बनता है। ये वक्त की सोझी सी, सोझी है कि जे दोहां जीआं दा सुभा मिलदा होगा ताई मन मिलणगे, जे दोहां दीआं आदतां जीवन दा म्यार ही वख होवे, एक दूजे कोलों अनेकां गल्लां दी संकोच हो जाएगी, ते जिस घर विच दो जीआं दी अपेदता मन तन करके ना होवे ओ कदी घर सुखी नहीं वसदे, उन्हां विच त्रेड़ बनी रहिंदी है, उन्हां विच दुबदा बनी रहिंदी है, तां कि गुरसिख दा विवाह आनंद कारज बन जाए, इसलिए दोहां दा मन तन करके सुमेल जरूरी है। मैं चाहना इन्हां दिनां अंदर आपां इस विशे ते ही कुछ विचार करिए, ते मुढ़ले रूप विच आनंद कारज दी मेन रस्म तो पहला आपां उन्दा चौगिरद दा बेस समझिए, मनुख ने दृष्टि क्यों होना है, शेख नु दृष्टि होने लई क्यों हुक्म किया गया, दिस तो लोग क्यों डरते सन, शेख ने क्यों अपनाया, गुरु ने बख्शिश करके क्यों चोली पाया, इस विवाह कार्य का आनंद कार्य के ऊपर महर्ष कर रहा सुमेल आत्मक सुमेल। बाबा कबीर जी ने यह गल एग्जाम्पल वजो रब वालों वर्ती मैं हो रज करा गुरबाणी जी है इनके प्रति एक गल समझनी है। प्रथाए साखी मां पुरपूर सांझी सगल जान प्रथाए है रब प्रथाए है आत्मा ते परमात्मा दा सुमेल है। लेकिन एक ख्याल करियो सरगुण ते निर्गुण विच की भेद है। सरगुण प्रभु दा ओ स्वरूप है जिहड़ा दिसदा है निर्गुण ओ स्वरूप है जिहड़ा दिसदा नहीं निराकार है उनका रूप न रेख न रंग कुछ त्रै गुण ते प्रभ भिन्न है। ते दूजे पासे सब में जोत जोत है सोए है सारे विच वस रहे है। मैं जिधर देखना सहस मूर्त नना एक तो ही सारे तेरे स्वरूप हुण उस सरगुण स्वरूप नूं निर्गुण नाल जोड़न लई इह भेद करन लई जरूरी है कि एक एग्जाम्पल अपेहता दी लई जाए। बस सारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब इस कंसैप्ट विच जे असीं आखांगे इस काम लई उचारण कीता है ते उहदी प्रेरणा नहीं दूजे पासे लवांगे फिर साडे नाल संबंध टुट जाएगा। बाणी बाणी दा संबंध साडे नाल टुट जाएगा बाणी सर्वकालिक भी नहीं रहेगी। फिर जेड़े जेड़े बिरतांत होए ने उसे नाल संबंधित रह जाएंगे। पर बाणी क्योंकि चौं जुगों विच सच है जब तक संसार सृष्टि है बाणी दी एग्जाम्पल बाणी दी अगवाई जीवन लई हमेशा बनी रहनी ते ताई बनी रहनी है जेनू असी एग्जाम्पल वजो लवांगे। रब दे प्रभु आत्मक परमात्मक प्यार दी भावनावां विच्चों जीवन नूं उस म्यार तक अभेदता तक ले जाण लई पति इस्त्री दे रूप नूं भी एक एग्जाम्पल वजों पेश कीता। भगत ते प्रभु दे रूप नूं भी उसे एग्जाम्पल वजों पेश कीता। बाणी दी तुक एक बार आई सी ते सतगुरु ने आख्या सी कहन लगे जिस घर विच शुभ गुणा वाली जिस पति नु शुभ गुणा वाली पतवता स्त्री प्राप्त होंदी है उनका सुभाग की होंदा है। एक वक्रा विषय आपां इन्हां दो समय अंदर विचारांगे। इत्थे हुण बाबा कबीर आख रहे ने कहिंदे ने मैं हैरान इस गल ते हुणना कि जिहड़ा जोगी जंगलां विच इस ख्याल नाल घर बार छड के पहाड़ां दीआं गुफावां विच इस ख्याल नाल गया है कि मैं प्रभु प्राप्ति करनी है जोगी बने। बाबा कबीर कहते हैं मैं जब तेरे वाल देखना डंडा मुंडा आसन दूर कर पवरे डंडा मुंडा खिंथा भेखधारी अगे जाके आखते हैं आसन पावर दूर कर बौरे छोड़ कपट नित हार भज बौरे जिस तू जाचे सो तेरे पवन भोगी कहे कबीर कैसो जग जोगी। कहन लगे जिन्नू मिलना चाहना है वो ते भोगी है पत्ते पत्ते विच रब के हर एक जीव विच वस के भोग पिया भोगदा है वो तां ग्रिस्ती है उनका इन्ना वड्डा घर है उनकी इन्नी वड्डी संतान परिवार है उनके कोल सारियां दा फिक्र भी है सब नूं कपड़ा भी दे रहा है रोजी भी दे रहा है जिन जियो पिंड मुख नक दिया वर्तन को खानी पानी अन्न खाना कपड़ पहनन दिया इन्ना कुछ सारियां नूं पिया दिंदा पिता वन इन्ना वड्डा दृष्टि है ते तू उन्हूं मिलना चाहना तेरा उनका सुभा नहीं मिलता तू ते सब कुछ त्यागी फिरना है वो त्यागी नहीं तू सब कुछ त्यागी बैठा है तेरा उनका सुभा ही नहीं मिलता ਤੇਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਪਲਿਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲੈ, ਉਸ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਐਸਾ ਤਿਆਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੈਸੇ ਮੱਛ ਕੱਛ ਹੰਸ ਮੁਕਤਾ ਪਖਾਣ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਰਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਦਤ ਸੈਮਾਨੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਛੂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੰਸ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਕਤਾ ਮੋਤੀ ਆਦਿ ਹੀਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੱਥਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਿਖ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਭਲਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਖੇ ਇਸ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਖ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਗਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਭਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਚੋਂ ਪੈਦਾ, ਪੁਰਾਤਨ ਕਹਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਥਾਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੰਸ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਮੋਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਸੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਖਾਣ ਨੇ ਪੱਥਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਕੁਝ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਇਸੇ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਜਨ ਵਿਪਤ ਜੈਸੇ ਏਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੇ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਹੈ ਮਿੱਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਨਮ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ, ਮੁੜ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਧਰਤੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਰਤਨ ਬਣਾਉਣੇ ਸਨ ਵੱਖ ਵੱਖ, ਬਣਾਏ ਇਸ ਇੱਕੋ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਟੀ ਏਕ ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਕਰ ਸਾਜੀ ਸਾਜਨ ਹਰ, ਕਾਹੂ ਮੈਂ ਮੋਤੀ ਮੁਕਤਾ ਹਲ, ਕਾਹੂ ਵਿਆਦ ਲਗਾਈ, ਪਰ ਉਸੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰੀ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਤੂੰ ਵਿੰਜਨ ਭੋਜਨ ਛਕ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਇੱਕੋ ਧਰਤੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਭੋਜਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤੋਂ, ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਥਾਵੇਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰੀ, ਤੈਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਧਰਮ, ਤੈਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਧਰਮ, ਸਕਲ ਗ੍ਰਸਤ ਸੀ ਸ਼ਾਖਾ ਕਰਮਾ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਸਤ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ, ਸ਼ਾਖਾ ਕਿਸੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਆਸ਼ਰਮ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵਰਨ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਇਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਤਿਆਗੀ ਬੀਆਬਾਨ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਜੇ ਭਲਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਭਲਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੰਨਿਆਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਯੋਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਭਲਾ ਸ਼ਾਖਾ ਟਾਹਣੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨੀ ਅਭਿਮਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਆਖੇ ਮੂਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਮੂਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਧੂ ਆਖਦਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਦੀ ਆਖਦਾ ਸੀ ਗ੍ਰਸਤੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਖਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਮਹਾਨਤਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਭਰੋਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਡਾ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤ ਦਾ ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜੜ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਖਾ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਹਰ ਪੱਤੇ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਹਰ ਫੁੱਲ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਹਰ ਫਲ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧਰਮ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਮੂਲ ਰੂਪੀ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨਨ ਮੈਂ ਗਿਆਨ, ਧਿਆਨਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ, ਗੁਰ ਸਗਲ ਧਰਮ ਮੈਂ, ਗ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਵਿਵਾਹ ਕਾਰਜ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਵਾਹ ਕਾਰਜ ਕੀ ਹੈ? ਗ੍ਰਸਤ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪਛਾਣ ਨਾ ਸਕੇ, ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਸਕੇ। ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਬਣਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਬੁਜ਼ਦਿਲ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਮਖੱਟੂ ਸਨ। ਮਖੱਟੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਵਿਹਲੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਖੱਟੂ ਹੋਏ ਕੇ ਕੰਨ ਪੜਾਏ, ਮਖੱਟੂ ਹੋਏ ਕੇ ਕੰਨ ਪੜਾਏ, ਘਰ ਘਰ ਮੰਗੇ ਭੀਖਿਆ ਜਾਏ, ਮਖੱਟੂ ਹੋਏ ਕੇ ਕੰਨ ਪੜਾਏ, ਘਰ ਘਰ ਮੰਗੇ ਭੀਖਿਆ ਜਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਸਦਾਏ ਮੰਗਣ ਜਾਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਖੱਟੂ ਹੈ, ਘਰ ਖਾਏ ਕਿ ਛੱਤੋਂ ਦੇਹ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ, ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਬਣਾਏ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਕਾਲ ਖਾਏ ਦੀ, ਉਸ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਿਹਲੀਆਂ ਖਾਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕਿ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਘਰ ਘਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੰਗਣ ਚੜ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਸੂ ਮੰਗਣ ਗਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮੰਗਤ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਲੋਕ ਤਿਕਾਰ ਕਹੇ ਮੰਗਤ ਜਨ, ਫੈਸਲਾ ਬਾਣੀ ਦੱਸ, ਲੋਕ ਤਿਕਾਰ ਕਹੇ ਮੰਗਤ ਜਨ, ਮੰਗਤ ਮਾਣ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਗਲੀ ਚਲਾਕੀ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਸਨੇ ਮਖੱਟੂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਖੱਟ ਘਾਲ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾ ਖਾਣਾ ਪਵੇ, ਪਹਿਨਣਾ ਪਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾ ਸੰਭਾਲਣੀਆਂ ਪੈਣ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਸੰਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੋਂ ਦਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਚੱਲਦੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਨੇ ਚੱਲਦੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗ੍ਰਸਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸਭ ਰਚਨਾ, उस रचना नूं तरतीब दे दित्ती है ताकि ये रचना चलदी रहे चलदी रहे। जे तेरे ख्यालां दे सारे हो जांदे तां संसार ना चल सकदा। पर केड़ी अजीब घटना है, कैसा शार्प दिमाग सी वो मनुख। पहला तो मखट्टू रहने लई ग्रस्त त्याग के जंगलों नूं चला गया, कन विच मुंदरा पा लईआं, जोगी बन गया, सन्यासी बन गया। हुण सोचिए मंग के खाना पै, लोड़ां ते हर मनुख दीआं नाल ने, मंग के खाना पैना ते मंगत नूं कदी माण नहीं मिलदा, मंगत नूं माण नहीं मिलदा। हुण अगली चलाकी यह कीती कि जिन्हां कोलों मंगता बन के जाके कुछ लैना है खाना है, मत किते ऐसा ना होए वो मैनू मान सन्मान नाल ना देखन, मंगता समझ के तिरकारा पाउन। उन्हां दे मन विच भरम कर दित पैदा कर दिता जाए जिन्हां ने घर छड्डिया है, असल महान हो ने लो इथों आ पैदा होई दी। जिहड़े सैकड़े डेरे चलते ने ना, जिहड़े सैकड़े भेख चल रहे ने, उनका कारण है वो भरम पैदा कर दिते। ग्रस्ती दे मन दे च भरम नाल एक कमजोरी पैदा कर दिती कि ग्रस्ती गुनाहगार ए महान ए रब नूं मिले होए ए रब दे नेड़े। इसलिए किसे मंगते नूं भी मान दिता जाए, आए नूं मत्थे टेक आया हुंदा मंगण वास्ते, लोग नूं मत्थे टेकी जांदे दरवाजे तेरा आ जाते हैं साढ़े कोई मंगता मंगे असं किसी को माण नहीं देंगे। एक दरवाजे से गोल पग से लंबा चोला पा के मंगता आ जाए उस मत्थे टेक नहीं बदल गया। एक भरम पैदा कर दिता, एक भुलेखा पैदा कर दिता। तो गुरु ने वह भुलेखा दूर किया, कहने लगे वह भलिया मंगण जेड़ा गुरु पीर सदा के जेड़ा अपने आप को साधु अखवा के महापुरुष अखवा के रब का रूप अखवा के ब्रह्म ज्ञानी अखवा के फिर दरवाजे ते मंगन आउंदा है, उन्हूं कदी मथा ना टेकी। फैसला सी गुर पीर सदा गुर पीर सदा मंगन जाए, गुर पीर सदाए मंगन जाए ताके मूल ना लगी है पाए। फैसला बन गया गुर पीर सदाए मंगन जाए ताके मूल ना लगी है पाए, इस भेखे थावो ग्रह भला। लो आ समझ गया, यही गुरु का फैसला। सिख ने क्यों ग्रस्ती पाई, इस विवाह के दरवाजे विच प्रवेश करके आश्रम विच ग्रस्त आश्रम विच क्यों पुजना। हुण आपां आउण वाले समय विच ये विचार करनी कि उस आश्रम विच की है, उत्थों जिहड़े भज्जे ने लोग वह क्यों भज्जे ने, गुरमत की दुनिया विच गुरमत के घेरे विच आके गुरमत की अगवाई विच जदों विवाह आनंद कारज बन जाता है फिर उस ही आश्रम विच उन्हां नूं की मिलता है। आ दो चीज़ां साड़ी समझ, फिर आपां अगे तुरांगे कि आनंद कारज की रस्म किवें है। इहदे एक एक शब्द नाल सानूं ओह गुरमती लागे की गल किवें समझाई जाती, क्योंकि गुरमती लागे नाल ही आनंद कारज बनना है, गुरमती लागे नाल ही ग्रस्त सुखां दा समान बनना है। कुछ लोग वो भी ने जिन्हां ने अंदरों दौड़ना शुरू कर दिता सी, उन्हां ने विवाह दे दरवाजे राहीं ग्रस्त आश्रम विच प्रवेश करना तां किते रह गया, दौड़ना शुरू कर दिता सी। पर गुरु कहिंदे ने आ मैं तैनूं गुरमत दा पल्ला फड़ा के अंदर ले जाना चाहना, क्योंकि इहो ही संसार जिन्हों तूं वेख के भज रहे हैं, मैं तेनु समझा देना चाहना ए विश्व संसार तुम जे देख दे, ए विश्व संसार तुम जे देख दे, एहो हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। मैं एक वर्ष की थी सी, एक ख्याल करे हो गुरु ख्याल बदलता है जे अपना पुत्र समझ के पाल रहे हैं तू किसे मोह विच है, ते जे उसे पुत्र की प्रतिपालना करन लगे हैं, सोच रहे हैं मेरे रब ने मेरे प्रभु ने यह जीव मैनू सेवा लिए भेजी है, यह बख्शिश करके ये सेवा बख्शी है, ते मैं ये अपना पुत्र दे मोह विच आके इनू नहीं पाल रहा, मेरे प्रभु वालों बख्शी हुई सेवा दा फर्ज ड्यूटी निभा रहा। पुत्र दी पालना भी एक भगती बन जाएगी, पालना पुत्र दी हो रही होगी, एक पुत्र मोह विच कर रहे है, एक इस ख्याल ते इस प्रभाव हेठ कर रहा है कि मैं पुत्र मोह विच नहीं, माई बाप पुत्र सब हर के किए, माई बाप पुत्र सब हर के किए, सबना को संबंध हर कर दिए, एक पुत्र समझ के कर रहे है, पुत्र मोह विच एक सेवा कर रहे है, मेरे रब ने बख्शिश करके इस जीव की सेवा मैंने बख्शी, बस बदल गया काम ओ ही हो रहा, बल्कि अगे नालों चंगा होएगा, अगे नालों ज्यादा प्यार नाल होएगा, क्योंकि उनके एक रब की खुशी भी नाल फिरो जाएगी, इतने केवल पुत्र मोह विच केवल पुत्र प्रतिपालना की रह जाएगी, उनके एक रब की खुशी भी नाल शुरू हो जाएगी, बस रब की खुशी तो भगती, जिहड़ी चीज रब नूं प्रवान चढ़ जाए जो प्रभु लई कीती जाए उसे दा नाम भगती है, वो पुत्र की सेवा भी जिहड़ी है पुत्र की प्रतिपालना भी जिहड़ी है वह भगती बन जाएगी। गुरु ने आख्या आ मैं तैनू इस गृहस्थ आश्रम विच जिथों लोग भजदे ने जिथों तरांदे ने ते मखट्टू होके कन्न पड़ाउंदे ने मैं चाहना मैं तैनू इस विवाह कार्ज राही आनंद दे उस दरवाजे आश्रम विच लै जाना चाहना, पर ओ तां होना है जे गुरमति लगे, फैसला यह सी गिर ही सेवक साध का एक गिर ही सेवक साध का गुरमति लागे गुरमति लागे एक गिर ही सेवक साध का गिर ही सेवक साध का गुरमति लागे हाँ गुरमति लागे नाम दान इशनान दिन नाम दान इशनान बिन हर भगत सो जागे नाम दान इशनान बिन हर भगत सो जागे हर भगत सो जागे गुरमति लागे गिर ही सेवक साध का एक गिर ही सेवक साध का लागे गुरमति लागे गुरमति लागे गुरमति लागे मैं चाहता सवल आनंद कारज की रसम दी विचार दी बजाय नाल नाल असी ये भी समझिए आखिर वो विवाह आनंद कारज परवान क्यों गुरमत दी दुनिया में इंदा की स्थान है जीवन दे इस रस्ते दा इन्नू पछाण लईए साढ़े सारियां दे जीवन नाल संबंध रखता है हर सिख दे जीवन नाल इंदा इस फंक्शन दा एक रिश्ता है सानू पता होवे गौरव होवे कि असीं ग्रस्ती हाँ कोई सानू किसी भरम भुलेखे विच आ के अपने दर दा मंगता ना बनाई फिरे गुरु बख्शिश करे असी गुरमत विच्चों अपने गुरु वालों बख्शे हुए जीवन म्यार नू समझ सकीए इन्हां शब्दां नाल खिमांदा जा चिखां फतेह बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।